मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 22 मई 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं आशुतोष कटारिया, आप सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हैं, और अंकित कुमार वर्मा, आप बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हैं। तो आशुतोष और अंकित, आप दोनों नौजवान मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इन दो दिनों की छुट्टियों में आपने अपने पीछे के सारे काम निपटा लिए होंगे। होता यह है कि हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन किसी वजह से उस टाइम टेबल में से छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीजें रह जाती हैं, फिर हम सोचते हैं कि बाद में जब वक्त मिलेगा तब हम उसे पूरा करेंगे, और सैटरडे संडे हमें इस तरह का वक्त अवेलेबल करा देता है और फिर हम मंडे को एक नई ताजगी के साथ और नए टाइम टेबल के साथ फिर से समय का मुकाबला करने के लिए डटकर खड़े हो जाते हैं, और मुझे यकीन है कि आप सब भी अब डटकर खड़े हो चुके होंगे। और खासकर फ्रेंड्स जो अभी प्री एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए तो अब एक महीने का भी वक्त नहीं बचा, उसमें भी चार दिन कम हो गए हैं और लगातार कम होते ही जाएंगे। तो अब तो आपके लिए डटकर खड़ा होने के सिवाय कोई विकल्प ही नहीं है, वो दौर जा चुका है जबकि आप आराम करने के बारे में सोच सकें। और सैटरडे संडे भी अब आप लोगों का उसी तरीके से मंडे और ट्यूसडे की तरह ही होना चाहिए, लेकिन याद रखिए कि हेल्थ की कीमत पर कतई नहीं। एक महीने का वक्त बचा है मित्रों, उससे भी कम का समय है, और जैसे जैसे एग्जामिनेशन प्री का नजदीक आता जा रहा है, याद रखिए कि आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो दो बातों पर, नंबर वन फिजिकल हेल्थ, नंबर टू मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ भी, घबराहट कम से कम हो, नींद पूरी हो, बेचैनी को कम करें, डाइट सिस्टम को अच्छा रखें। गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही जाएगा, गर्मी से अपने को बचा कर रखें, और पढ़ाई बड़े संतुलित तरीके से करें, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन्हीं पर फोकस करें। ज्यादा से ज्यादा समय अपने टेस्ट अभ्यास को दें ताकि आपका आपके जो दिमाग की लय है, रिदम है, वो क्वेश्चंस पेपर के जो पैटर्न होते हैं उस पैटर्न के अनुकूल बैठ सके। तो मित्रों, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, और आइए अब हम लोग बात करते हैं न्यूज एनालिसिस की। फ्रेंड्स, कुछ न्यूज हैं जो छोटी छोटी खबरें ही हैं, उसमें से न्यूज से न हट करके मैं जो अखबार की खबर है उस पर थोड़ी सी आपसे बात ज्यादा करूंगा। पहले मैं छोटी छोटी खबरों के बारे में आपको बता दूं। तेजस के बारे में आपने सुना, एक नई रेल शुरू हुई है तेजस, अलग अलग जगहों पर शुरू की जाएंगी, नाम इसका रखा गया है तेजस, जिसकी स्पीड मैक्सिमम 200 किलोमीटर तक होगी और पैक ट्रेन चलाई गई है मुंबई से गोवा तक, जो 8.5 घंटे में उस दूरी को पूरा कर लेगी मुंबई गोवा के बीच में। मित्रों, अब आप देख रहे होंगे कि भारत में एक अलग तरह की संस्कृति की शुरुआत हुई है, फास्टनेस, तेजी। ट्रेन में आप देख रहे हैं कि यही बात आपको सुनने को मिल रही है, सिटी पर आप जाएंगे तो स्मार्ट सिटी की कल्पना आ रही है, टेक्नोलॉजी में हम लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, 3G 4G 5G। तो आप देख रहे हैं कि एक दुनिया जिधर जा रही है उसमें आपको स्पीड का फैक्टर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। स्पीड फ्लाइट के भी आपको, अब इतनी स्पीड की फ्लाइट हो गई, फलाना हो गई, ये चीजें आपको सुनने में आती होंगी बीच में। ये मैं केवल तथ्य के रूप में आपके दिमाग में डाल रहा हूं कि कहीं शायद निबंध वगैरह में आप इसका इस्तेमाल कर सकें कि कैसे दुनिया तेज रफ्तार की ओर जा रही है। और होता यह है फ्रेंड्स कि जैसे जैसे दुनिया की रफ्तार तेज होती है, सच पूछे तो हमारी जिंदगी लगती तो है कि बहुत तेज हो रही है, लेकिन मतलब ये मेरी व्यक्तिगत राय है, लेकिन उसकी गुणवत्ता कहीं ना कहीं कम होती जाती है, क्योंकि जो जिंदगी की जो तेज रफ्तार है शायद हमारी चेतना उस तेज रफ्तार के साथ मैच नहीं कर पाती। और हमारी एक आदत हो जाती तेज तेज, तुरंत तुरंत, जल्दी जल्दी, और इसका जो विपरीत प्रभाव पड़ता है वो पेशेंस पर पड़ता है, हमारे धैर्य पर पड़ता है, धैर्य कम होता जाता है, क्योंकि हमारी आदत पड़ चुकी कि सब कुछ तुरंत ही, अब भी। और बहुत सी चीजें जिंदगी में ऐसी हैं जो तुरंत और अब भी नहीं हो सकती, वो अपने टाइम की मांग करती हैं, उन्हें उनका उतना वक्त चाहिए और हम वक्त देने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमें तेजस की आदत हो गई है। मिसमैच हो जाता है, चेतना और समय के प्रवाह में मिसमैच हो जाता है, असंतुलन आ जाता है, और ये असंतुलन कहीं ना कहीं फिर ब्लड प्रेशर के रूप में, शुगर के रूप में, सोसाइटल स्टेप्स के रूप में हमें दिखाई देता है। तो एक छोटी सी बात मैंने इसके माध्यम से आपके सामने रखी है। फ्रेंड्स, एक खबर आपने कश्मीर समस्या के बारे में सुनी कि हमारे गृह मंत्री जी ने एक बहुत जबरदस्त शब्द का इस्तेमाल किया है कि कश्मीर समस्या का हम स्थायी समाधान ढूंढ रहे हैं। मतलब समाधान की बात तो होती थी फ्रेंड्स, लेकिन स्थायी समाधान शब्द मैंने पहली बार सुना है और उसको वेलकम भी लोगों ने किया है। अब देखिए कि क्या, किस तरीके से इसका स्थायी समाधान निकल पाता है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है और बहुत इम्पॉर्टेंट बात भी है दोस्तों कि इसका स्थायी समाधान तो निकलना ही चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया कश्मीर समस्या को लेकर और पाकिस्तान के द्वारा लगातार हस्तक्षेप किया जाना, प्रॉब्लम क्रिएट करना। आप देख रहे हैं कि कभी भी कोई घटना हो जाएगी और जवान हमारे मारे जाते हैं, फिर से देश का माहौल बिगड़ता है, देश की मानसिकता बिगड़ती है, भारत पाकिस्तान के बीच में फिर से एक तनाव की स्थिति आती है। और भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति, अनफॉर्चुनेट पार्ट उसका यह है कि उसका एक इंटरनल इम्पैक्ट पड़ जाता है। इंटरनल इम्पैक्ट एक तरह से हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम सद्भाव, इन पर भी कहीं ना कहीं उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो जाता है, अगर सच हम उसको देखें तो इसलिए इसका स्थायी समाधान से बेहतर तो कोई उपाय हो ही नहीं सकता, अगर किया जा सका तो। न्यूज में आपने एक शब्द सुना होगा दोस्तों, उच्चायोग, है ना, उच्चायोग। ये बेसिकली जो दूतावास होते हैं, एक होते हैं दूतावास और दूसरे होते हैं उच्चायोग। मैं कई बार इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं, यहां भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि देखिए, जो दूतावास होते हैं वहां एम्बेसडर होते हैं, माने हमारे राजदूत होते हैं, तो जहां राजदूत रहते हैं उसे हम कहते हैं दूतावास, यानी कि राजदूत का निवास भी होता है, जनरली वो ऑफिस भी होता है, तो राजदूत का ऑफिस है बेसिकली वो, हम उसको दूतावास कहते हैं। फिर होता है उच्चायोग। उच्चायोग बेसिकली जो होते हैं वो राजदूत नहीं कहलाते, उस ऑफिस में जो अपॉइंट किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं हाई कमिश्नर, हाई कमिश्नर, उच्च आयुक्त, हाई कमिश्नर। बेसिकली जो राष्ट्रमंडल देश है वो आपस में जो एम्बेसडर अपॉइंट करते हैं उनको हाई कमिश्नर कहा जाता है, हाई कमिश्नर, इसको याद रखिएगा। और राष्ट्रमंडल देशों का समूह आप जानते हैं कि कौन से समूह है, जिन पर कभी ब्रिटिश का शासन रहा था, ब्रिटेन का शासन रहा था, उनको मिलाकर के एक संगठन बनाया गया है जिनके हेड ब्रिटेन की महारानी होती हैं, उनको हम राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। आपको माना कॉमनवेल्थ इंग्लिश में उसे कहा जाता है, और उनके गेम्स भी होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं। भारत में जो कॉमनवेल्थ गेम अभी दिल्ली में हुआ था, जिसको लेकर के दुनिया भर के स्कैंडल की बात सामने आई थी, वो आपके ध्यान में होगा। तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज के जो एम्बेसडर्स होते हैं उनको फिर उच्चायुक्त कहते हैं, जो एक दूसरे के यहां अपॉइंट किए जाते हैं। तो इसीलिए चूंकि पाकिस्तान कॉमनवेल्थ कंट्री में है, तो इसीलिए वहां के उच्चायुक्त को बुलाया गया, उच्चायोग में कहा गया, इस तरह के शब्द उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, अर्थ बिल्कुल एम्बेसडर का ही होता है। इसके बाद एक खबर थी फ्रेंड्स स्टार्टअप को लेकर, मैं स्टार्टअप के बारे में एक दो छोटी छोटी बातें आपको बताना चाहूंगा। पहला तो यह है कि शुरू में जब स्टार्टअप आया था तब लोगों में बहुत उत्साह था, उत्साह अभी भी है, लेकिन जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बहुत एनकरेजिंग नहीं है। अखबारों में जो पढ़ने को मिल रहा है कि हार्डली 1% स्टार्टअप सक्सेस हो रहे हैं, हार्डली 1%, नहीं तो ज्यादातर स्टार्टअप शुरू होते हैं और कुछ समय के बाद बंद हो जाते हैं, वो फेल हो रहे हैं और दुनिया भर का पैसा डूब जाता है। और उसका रीजन ये बताया गया है, अभी जो थोड़ी बहुत स्टडीज आ रही है, कि बड़े उत्साह में स्टार्टअप शुरू कर दिए जाते हैं, नए नए लोग होते हैं, अनुभव कुछ होता नहीं है, लेकिन उन्हें पूंजी मिल जाती है, जो इन्वेस्ट करने वाली जो कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, वो उन्हें पूंजी दे देते हैं। इनको लगता है स्टार्टअप वालों को कि नहीं, शुरू में ही अच्छे अच्छे लोगों को अपॉइंट किया जाए, बहुत अच्छी सैलरी दी जाए, बहुत अच्छा दफ्तर हो, तो महंगे जगहों पर दफ्तर ले लेंगे, बहुत सजाएंगे संवारेंगे, हाई सैलरीज लोगों को देना शुरू कर देंगे, तो खर्चे उनके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और देखिए, कोई भी चीज स्टार्टअप की जाएगी तो तुरंत तो वो पौधा लगाने के बाद फल देगा नहीं, वो वक्त लेगा, लेकिन वो इतना जितना वक्त लेगा फिर उतना बर्दाश्त करने की क्षमता इनमें नहीं रह जाती, क्योंकि इनके एक्सपेंसेस बहुत बढ़ चुके होते हैं और नतीजा ये होता है कि फिर उसे स्टार्टअप को बंद करना पड़ता है। ये एक समीक्षात्मक रूप में ये बात आपके दिमाग में हो, इसलिए मैंने ये तथ्य आपको बताया है। इसके बाद एक खबर ये भी थी दोस्तों कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर रेडियो पर प्रोग्राम आने वाला है, इसे आप जरूर सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर पिछले साल क्वेश्चन भी पूछे गए थे प्री मेंस में, तो इसे आप जरूर सुनेंगे। मित्रों, अब मैं दो खबरों पर आता हूं जो अखबार से मैंने लिए हैं। एक, आपने देखा कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अब राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार अपने देश से बाहर निकले हैं और वो सऊदी अरब की यात्रा पर आए हैं। सऊदी अरब ने अमेरिका अरब मुस्लिम सम्मेलन का जो आयोजन किया है उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति को बुलाया है और वो वहां पहुंचे हैं। इसके बाद जो दूसरी खबर है वो ये है मित्रों की, अभी ईरान में चुनाव हुए थे और ईरान के चुनाव में एक बहुत अच्छी बात जिससे पूरी दुनिया ने बहुत ही राहत की सांस ली है कि अभी जो वहां के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी, उन्हें फिर से ही वहां का राष्ट्रपति चुन लिया गया है, जो 4 साल तक वहां के राष्ट्रपति बने रहेंगे। इन दोनों खबरों का थोड़ा सा मेल है तो मैं आपको कुछ बातें आप बताना चाहूंगा। अब देखिए, एक है ईरान और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की। यहां दो बातें या दो गाइडलाइंस में आपको विशेष रूप से देना चाहूंगा फ्रेंड्स, वो ये कि जब भी हम इंटरनेशनल अफेयर्स की तैयारी करें तो बहुत जरूरी है, मतलब निहायत ही जरूरी है, अपरिहार्य है, इसे टाला नहीं जाना चाहिए। हालांकि मुझे मालूम है कि बहुत से स्टूडेंट टाल देते हैं, कि हमें तुरंत मैप पर उन देशों को देखना चाहिए जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बिना बात बनेगी नहीं, सही तरीके से चीजें समझ में नहीं आएंगी। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि जब भी हम इस तरह की घटनाओं को, जैसे ईरान, फिर हमने दूसरी तरफ अभी बात की सऊदी अरब, तीसरी तरफ हमारे सामने क्या है अमेरिका, ये तीन देश की बात यहां आई, और नो डाउट कि भारत तो है ही, क्योंकि हम तो भारत के संदर्भ में चीजों को देखना चाहेंगे, हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, चौथा भारत, तो बट नेचुरल है कि अब हम ये देखें कि ये जो चार समूह हमें दिखाई दे रहे हैं, ये चारों का शक्ति संतुलन किस तरीके का है, बैलेंस ऑफ पावर कैसा है। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब है कि ईरान किधर है, अमेरिका किधर है, सऊदी अरब किधर है, भारत किधर है, भारत के ईरान के साथ क्या संबंध है, ये हमारे दिमाग में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। अगर इसमें जरा भी गड़बड़ी हुई, मान लीजिए कि एनालिसिस में गड़बड़ी हो जाएगी, और ये गड़बड़ी ना हो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एटलस उठाकर बकायदे इनको लोकेट करें। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप एटलस उठाएं और पॉलिटिकल मैप देखें एशिया का, और उसमें ईरान को लोकेट करें, और फिर दूसरा मैंने कहा कि सऊदी अरब आप उसको लोकेट करें कि ये कहां है। इंडिया आपको मालूम ही ये कहां है। अब आपको इंडिया से देखिए, लेफ्ट में आप चलिए यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ चलिए, तो इंडिया से आपको पूरे के पूरे पश्चिम दिशा में पाकिस्तान मिल जाएगा, फिर पाकिस्तान से सटे हुए आपको दोनों देश मिल जाएंगे, ऊपर की तरफ अफगानिस्तान और फिर नीचे पश्चिम और उत्तर की तरफ ईरान, यानी कि ईरान तो हमारे बिल्कुल नजदीक है, बीच में पाकिस्तान ही है स्थल भाग से। देखिए ध्यान से मैप में देखिए, मुझे सुनिए मत, मैप में देखिए, तब जाकर के आपके दिमाग में बिंब बनेंगे, इमेजेस बनेंगी और वही आपकी एनालिटिकल पावर डेवलप करेगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है, बात ये फ्रेंड्स, आपने चाबहार बंदरगाह के बारे में सुना होगा। हमारे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ ही समय पहले ईरान यात्रा पर गए थे तो इस बंदरगाह के बारे में भारत और ईरान के बीच समझौता हुआ है, अफगानिस्तान भी उस समय वहां मौजूद था, इस बंदरगाह के बारे में समझौता हुआ और चीन भी इस बंदरगाह को चाह रहा था वन बेल्ट वन रोड के मामले में, लेकिन ईरान ने चीन को मना कर दिया, भारत के साथ समझौता किया है। अब आप देखें कि एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर यहां आपको तुरंत यह दिखाई दे जाएगा कि ये जो ईरान है, अगर पाकिस्तान से उसे रास्ता नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, भारत और ईरान दोनों बड़े आराम से समुद्री मार्ग से जुड़े हुए हैं। इनके बीच में है कौन? अरबियन सी, अरब सागर भर है, बीच में थोड़ा सा गल्फ ऑफ ओमान है, अरब सागर। अब आपके दिमाग में यह फैक्ट आ गया। फिर आप देखिए कि दूसरी तरफ, अभी मैंने कहा कि सऊदी अरब अभी डोनाल्ड ट्रंप गए हुए हैं, ये जो सऊदी अरब है मित्रों, तो 6-7 ऐसे देश हैं जिन्हें हम गल्फ कंट्री कहते हैं और ये तेल के मामले में बहुत समृद्ध राष्ट्र है, तेल के मामले में बहुत समृद्ध राष्ट्र है। इनके जो नाम है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं याद करने के लिए, सऊदी अरब है, बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है और यूएई है। आप देखिए कि अब ये नक्शे में कहां है तो आपको पता लगेगा कि ईरान के नीचे, ईरान के आसपास ये सब के सब देश हैं और वहां पर बीच में एक छोटा सा है गल्फ, दी गल्फ, एक खाड़ी है। तो बट ने चले कि उस खाड़ी के आसपास रहने वाले देशों को हम खाड़ी गल्फ कंट्रीज कहते हैं। तो यहां क्लियर हो जाएगा, अच्छा अगर हम गल्फ कंट्री कह रहे हैं तो उसका ये मतलब है, आपको क्लियर हो जाएगा ये गल्फ कंट्रीज है, राइट। अब ये आपके दिमाग में क्लियर हो गया। अब एक फैक्ट आप और अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए दोस्तों कि ये जो गल्फ कंट्रीज हैं ये सही मायने में परंपरागत रूप से अमेरिका के दोस्त हैं, अमेरिका के मित्र राष्ट्र हैं, लेकिन ईरान के ये विरोधी हैं, ईरान को ये पसंद नहीं करते और अमेरिका भी ईरान को पसंद नहीं करता। ईरान, अमेरिका ने तो प्रतिबंध लगाया हुआ है, फिर ओबामा जी ने समझौता भी ईरान के साथ किया था तो ट्रंप ने कहा कि मैं उस समझौते को रद्द करूंगा, अगर आपने इससे पहले पढ़ा हो तो आपको ध्यान होगा। तो अब स्थिति क्या बनी कि भारत और ईरान मित्र हैं, ठीक है, अमेरिका ईरान को पसंद नहीं करता है, ये जो गल्फ कंट्रीज के राष्ट्र हैं ये अमेरिका के दोस्त हैं लेकिन ये ईरान को पसंद नहीं करते हैं, इस तरह का अब इक्वेशन बन गया। अब आप देखिए कि चाइना पाकिस्तान का मित्र है, चाइना पाकिस्तान में वो ग्वादर बंदरगाह और कहां कहां करके वन रोड वन बेल्ट कर रहा है जिसको लेकर के भारत को थोड़ी सी परेशानी भी बढ़ रही है। ऐसे में ईरान से अगर हमने बहुत जल्दी अपना ये चाबार बंदरगाह वाला रास्ता बना लिया तो वन बेल्ट वन रोड का काट भारत के पास होगा, उसका मुकाबला कर सकेगा। तो भारत के लिए ईरान बहुत अच्छा देश है, दोस्त है, और अच्छी बात यह हुई कि वहां के अभी जो पहले से राष्ट्रपति थे वो जीत गए, जो उदारवादी हैं, लिबरल है, उदारवादी है। दूसरे नेता जो थे वो कट्टरवादी थे, वो मुस्लिम धार्मिक संगठनों को महत्व देना, महिलाओं के अधिकार को और उसमें कटौती करना, इस तरह के नेता थे, तो वो पराजित हो गए। तो भारत के लिए बड़ा फेवरेबल सिचुएशन हो गया। अगर ये आपके दिमाग में स्थितियां क्लियर हो गई तो फिर आप देखिए कि कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस आपका बेहतर नहीं बनता है। तो मित्रों ये तैयारी करने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा तरीका बताया है और मुझे इसमें कम से कम कोई डाउट नहीं कि अगर आप इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशंस पर बहुत जल्दी आपकी बहुत ही अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो मित्रों अब न्यूज से इतना ही, जहां तक न्यूज़पेपर का सवाल है मैं आपको कुछ न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप लोग देख लीजिएगा, उनकी संख्या बहुत कम है। और अंत में मैं आता हूं ईमेल पर, सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, अंकित वर्मा, उत्कर्ष दीप पटना बिहार से, सूर्य प्रताप सिंह रायबरेली उत्तर प्रदेश से और अविनाश त्रिपाठी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।